हरे कृष्ण। तो आज के इस 18 जून के जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बहुत धुआंधार वर्षा हो रही है, गर्मी के बाद सब लोग तप रहे थे, हाँ दिमाग मन शरीर तप रहा था। अभी भगवान घनघोर वर्षा कर रहे हैं। जैसे भगवान के घनघोर वर्षा होती है तो हमें रथ यात्रा की याद आती है, क्योंकि रथ यात्रा हमेशा बरसात के मौसम में होती है। और श्री जगन्नाथ जी ये हमारे विराजमान भगवान अपने भाई और बहन के साथ बैठते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हर रोज़ जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ये एक ही जगह है जहाँ पर रोज़ भगवान की रथ यात्रा होती है। रोज़ भगवान रथ में बैठकर सभी हॉस्पिटल में घूमते हैं, सबको दर्शन देते हैं, जिनको कोई मिलने आता है, जिनको कोई मिलने ही आता नहीं है वो सबको मिलते हैं। हाँ, और किसी धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, किसी देश का हो, परदेश का हो या इस देश का हो, भगवान को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई मिलने वाले आए हो या कोई बीमार होकर भर्ती हो गया हो, वो सबको दर्शन दे दे। पूरे विश्व भर में जितने भी भगवान हैं, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं कृष्ण भगवान, वो अनंत रूप में अवतार लेते हैं, संभवामी युगे युगे, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में है, सब जगह एक ही फॉर्म में दिखते हैं, ऐसा नहीं है। कभी नरसिंह भगवान बनकर आते हैं, हिरण्यकशिपु को फाड़ देते हैं, तो वामन भगवान बनकर आते हैं, बलि महाराज का गर्भ हरण कर लेते हैं, कभी हरे रंग में आते हैं, धनुष धारण करके प्रभु रामचंद्र के रूप में रावण का वध करते हैं, कभी वराह बनकर आते हैं, मतलब जंगली सुअर, उसमें रूप में भगवान आते हैं। जंगली सुअर जो है बहुत ही गंदा दिखता है, उसके पास भी कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि अचानक उसने बदन को हिला दिया तो पूरा गटर का पानी आपके ऊपर आएगा, ये सोचकर कोई सुअर के आसपास भी घूमता नहीं है, दूर से ही देखते हैं उसको, और आया तो और भागते हैं दूर उससे। वो उसी रूप के अंदर भगवान बहुत सुंदर होकर अवतार लेते हैं, सभी ऐश्वर्यों से सुंदरता से भरकर। और हिरण्यकशिपु के जो बड़े भाई हैं हिरण्याक्ष, उनका आसमान में युद्ध करते हैं उनसे, आकाश में, और उसको मार देते हैं। और वही भगवान इस अद्भुत रूप में भी आते हैं, जिसके हाथ पंजा ही नहीं है, पैर ही नहीं है उनके, बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतनी कान की तरफ मटती हुई मुस्कान है उनकी, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े अद्भुत भगवान हैं। और जितने भी भगवान हैं, इनकी जितनी भी मूर्तियां भगवान की मंदिर में जहाँ पर लगाई गई हैं, ये सिंघाचलम में नरसिंह भगवान की 9 मंदिर है, और 9 प्रकार के अलग अलग भाव में नरसिंह भगवान के अलग अलग मंदिर है वहाँ पर। एक प्रहलाद के साथ में है, एक लक्ष्मी के साथ में है, एक योगासन कर रहे हैं, एक करंजा नरसिंह वो धनुष धारण करके खड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक उग्र नरसिंह है जो हमेशा चंदन के अंदर रहते हैं, और एक भगवान श्रीरंगम में सोए हुए हैं। साउथ में जाएंगे तो सोते रहते हैं एक के बाद दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, चौथा मंदिर, सब जगह सोए हुए हैं। इतने विशाल है कि इतना बड़ा हाथ है उनका, ऐसा पंजा है इतना बड़ा, तो हम विश्राम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी भगवान की जो मूल मूर्ति है, जो मूल विग्रह है, वो अपना जहाँ पर प्रतिष्ठापना की गई है उस जगह को छोड़कर, उस वेदी को छोड़कर बाहर नहीं निकलते। एक होती है उत्सव मूर्ति, आपने सुना है उत्सव मूर्ति क्या होती है? उत्सव मूर्ति मतलब वो मूर्ति जो मेन मंदिर के मेन मूर्ति के सामने होती है, छोटी सी, और वो उत्सव मूर्ति को लेकर फिर प्रदक्षिणा, फिर शोभा यात्रा, फिर जुलूस, फिर रथ यात्रा, वो सब करते हैं। रथ यात्रा जो है वो उत्सव मूर्ति को बिठाकर उस रथ को घुमाते हैं। लेकिन मेन मूर्ति के बाहर नहीं निकलती। हमारे मंदिर में भी, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी शोभा यात्रा होती है, लेकिन जो छोटे विग्रह हैं ना, राधा गोपीचंद वल्लभ, उनको लेके जाते हैं। वो बाणगंगा में हमारे मंदिर में गर्मी के मौसम में, जब बहुत गर्मी होती है, तो भगवान को जल विहार का आनंद देने के लिए बाणगंगा में बोट यात्रा करते हैं। हाँ, आप लोगों को जाना चाहिए, कितना आनंद होता है उसमें, आपको देखना चाहिए। बोट में भगवान को बिठाते हैं, बोट को पूरा फूलों से सजाकर, उसमें लाइट लगाकर, उसमें पूरा मंदिर बनाकर, बीच में फूलों से सजाकर राधा गोपीचंद वल्लभ की मूर्ति को बिठाते हैं, और गीत गाते हुए चारों किनारे पे भगवान के भक्त बैठते हैं और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, और भगवान को नौका विहार कराते हैं। जल में बोट घूमती है भगवान को लेकर, लेकिन वो भी उत्सव मूर्ति रहती है। मेन मूर्ति जो है गोपीनाथ जी की, वो बाहर नहीं आती। इस विश्व में ऐसे एक अनोखे भगवान है जगन्नाथ जी, जिसके मूल विग्रह जो है साल में एक बार मंदिर छोड़कर बाहर निकलते हैं। इतनी कृपा और कोई भी नहीं करते। नंबर दो के कृपा वाले जो है पांडुरंग भगवान विट्ठल। एक और बात बताना भूल गया मैं, कि एक बार कोई मूर्ति अगर मंदिर में अगर स्थापना हो गया, उसका प्रतिष्ठापना हो गई उसकी, तो उसके बाद में उसका जो होता है ना एरिया, उसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह मतलब पुजारी ही केवल वहाँ पर प्रवेश कर सकता है, सब लोग नहीं जा सकते हैं। एक जगह होती है जहाँ तक बॉर्डर होता है उसके, दूर से दर्शन करने का भगवान, भगवान को आप छू नहीं सकते हैं। जो पुरोहित है, जो पुजारी है, जिसकी योग्यता है, जिसने दीक्षा लिया है, जिसको अधिकार है, वही अंदर जाकर भगवान की सेवा, पूजा अर्चा, भोग लगाना, नैवेद्य सब कार्य कर सकता है। लेकिन कोई आम आदमी ऐसे जाकर भगवान को छू नहीं सकता है। लेकिन विट्ठल भगवान ऐसे भगवान हैं कि उनके पैर लोगों को छूने का अलाउड है, परमिशन दिया गया है। सब लोग जाकर उनके पैर को मत्था टेकते हैं, हाथ लगाते हैं, पैर को मालिश भी करते हैं, कोई कोई दबाते हैं पैर को, सेवा करके भाव संभावना से। लेकिन आप उनको गले नहीं मिल सकते, इतने पास में है फिर भी आपको पुजारी खड़े रहते हैं वहाँ पर, खाली सर पे लगाने का, हाथ लगाने का, निकल जाना बस। ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है कि पहले विट्ठल भगवान को गले भी मिलते थे लोग, लेकिन उसके बाद में फिर लोग पापी हो गए, शराबी हो गए, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले बन गए, व्यभिचारी बन गए। हाँ, उसी हाथ से शरीर से वेश्या को आलिंगन देंगे, उसी को जाकर भगवान को लगाएंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर वो प्रथा बंद की गई, अभी केवल पैरों को हाथ लगाने देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी भगवान जो है, इनका ऐसा है कि इनका मंदिर में किसी बिना हिंदू आदमी के प्रवेश नहीं मिलता है। हमारे भक्ति तीर्थ महाराज थे, वो जन्म से क्रिश्चियन थे और रंग के काले थे, मतलब अफ्रीका जैसे, तो उन लोगों को प्रवेश नहीं है। किसी भी फॉरेनर को प्रवेश नहीं मिलता है, कोई क्रिश्चियन को प्रवेश नहीं मिलता है, कोई मुसलमान को, कोई सिख है, कोई पारसी है, इनके मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। अरे क्या बताएं आपको, इतना जगन्नाथ जी का इतना नियम है कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पावर में थी तभी, मतलब माजी प्रधानमंत्री नहीं थी वो, उसमें प्रधानमंत्री थी वो जब वहाँ पर आई तो उसको भी प्रवेश रोका गया, उसको एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने पारसी बाबा के साथ शादी की थी, फिरोज गांधी। इसलिए प्रधानमंत्री होते हुए, देश के पावर में होते हुए भी उसको जगन्नाथ के मंदिर में एंट्री नहीं दिया, वहीं से उसको बाहर से ही छुट्टी कर दिया उसका। कितना स्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और हमारे में से, हिंदू में से अगर कोई बहुत गोरा व्यक्ति है, समझो बहुत ज़्यादा गोरा, तो उसको भी रोकते हो, पूछते हैं नाम क्या है तुम्हारा, गोत्र कौन सा है, कहाँ से आए हो, उनको लगता है कि फॉरेनर है। कोई को होते ना, हिंदू भी बहुत गोरे गोरे होते हैं, ब्राह्मण कोई कोकणस्थ ब्राह्मण होते हैं, कोई बहुत गोरे होते हैं, उनको वो रोक लेते हैं। और अगर आपको फटाफट गोत्र बोलने को नहीं आया, आपका नाम गोत्र भाषा नहीं बोलने को आया, तो आपको फिर वो अंदर जाने देंगे नहीं। ऐसा मंदिर है वो। तो वो जगन्नाथ भगवान जिसके मंदिर में पूरे साल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है बिना हिंदू, वो इतने दयालु हैं कि साल में एक बार वो अपना मंदिर छोड़ के बाहर आ जाते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। और रथ में बैठकर एक जगह है वहाँ पर, उसका नाम है गुंडीचा मंदिर, जिसको गुप्त वृंदावन कहा गया है। वो गुप्त वृंदावन में जाके 9 दिन रहते हैं, रथ में जाते हैं, रथ लोग खींचते हैं उसको, और जहाँ जहाँ रथ रुकता है वहाँ वहाँ जगन्नाथ जी अपने सभी भक्तों को गले मिलते हैं। उस समय हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन फॉरेनर इंडियन का कोई भेदभाव नहीं होता है, साल में एक दिन सारे वर्ल्ड के लोग वहाँ पर आते हैं, जो फॉरेनर हैं, जो श्रद्धा रखते हैं उन पर, जो उनकी भक्ति को अपना चुके हैं लेकिन फॉरेनर है शरीर से, अपनी भाषा नहीं बोलते, वहाँ की भाषा बोलते हैं, वो सारे लोग मुसलमान हो, कहीं चांडाल हो, कोई कोई हो, कोई कुछ भी हो, सबको एंट्री है, सब लोग रथ पे चढ़ते हैं और भगवान को ऐसे आलिंगन देते हैं, गले ही मिलते हैं प्रेम से। और जो पंडा लोग साल भर उनको विरोध करते हैं आने के लिए, वो पंडा लोग बुला बुला कर उनको भगवान पर डालते हैं। ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दर्शन करने आते हैं लेकिन उनको उतनी श्रद्धा नहीं कि भगवान को मिलना चाहिए वगैरह, लेकिन अगर वो गलती से रथ के ऊपर चढ़ गया तो उसको पकड़ के पुजारी बोलते हैं मिलो मिलो मिलो, उसको गले मिला देते हैं पूरा, या तो दबा देते हैं भगवान के ऊपर। और भगवान का शरीर इतना बड़ा है कि मेरे जैसा आदमी ऐसा करेगा ना तो मेरा हाथ भी वो आधा भी नहीं पहुंचता है, उनको पूरा घेर नहीं सकता है, आधे से भी कम घेर सकता हूँ। ऐसा ही है, मतलब इसके आगे भगवान ऐसे है लेकिन मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, इतना ही, इतने बड़े शरीर भगवान का है, मेरे से भी 2-3 फुट ऊंचा, हाँ ऐसे भगवान का विग्रह है। और वो विग्रह को मंदिर से उतारने के लिए कम से कम 200 आदमी लगते हैं, 200 आदमी, और 200 आदमी से भी वो उठते नहीं हैं, उनको खाली घसीटते लेके जाते हैं, उनके शरीर के नीचे पूरा गद्दी वद्दी लगा देते हैं और उनको खींचते 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 लेके आते हैं, ऐसे डुलाते डुलाते झूलते 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 आ जाते हैं, उठा नहीं सकते उनको, रथ पर भी ऐसे खींचते हैं उनको और खींच कर घसीट कर लेके जाते हैं, उठा कर लेके ना मुमकिन नहीं है, ना पॉसिबल। केवल जो चक्र जो हैं सुदर्शन चक्र, उनको 4-5 भक्त लोग उठा के ले जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा होता है, और सुभद्रा माई को उठा के ले जाते हैं क्योंकि वो कुछ 25-30 भक्त लोग उसको उठा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ और बलदेव को वो नहीं उठा सकते, इतने बड़े विग्रह हैं, हाँ इतने दूर से दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े। और ऐसे एक ही भगवान है वो जो दिन भर खाते रहते हैं, जैसे ही भोग बन गया भोग लगता है खाते, कोई टाइमिंग नहीं है, लंच टाइम डिनर टाइम ऐसा नहीं, जैसे जैसे किचन में आइटम बनते जाता है वैसे वैसे पर्दा बंद होता है, भोजन करते हैं फिर खोलते हैं, और कोई प्लेट वेट में खाते नहीं वो, नहीं इतने बड़े बड़े हंडे में खाते, इतना बड़ा हंडा रहता है, उसको उठाने में 4 आदमी लगते हैं। 7,200 किलो का रोज चावल बनता है और भगवान उसको खाते हैं, 56 आइटम दिन में सुबह से लेकर रात तक 56 आइटम खाते हैं, कभी 4 खाते हैं, कभी 5, कभी 13, कभी 12, कभी 11, कभी 6, सब मिलके दिन भर में 56 आइटम उनको मिलता है। ऐसे कहते हैं कि भगवान जो है जब उनको विश्राम करने का मूड आता है तो वो श्रीरंगम जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जितनी भी मूर्ति भगवान की सब सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। जब भगवान को खेलने का मूड आता है तो भगवान वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर लीला करते हैं और खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, गाय चराते हैं, सखियों के साथ नाच करते हैं। जब उनको तपस्या करने का मूड आता है तो कहाँ जाते हैं वो, हाँ बद्री का आश्रम जाते हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या करते हैं, स्वयं भगवान तपस्वी बन जाते हैं और नर और नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। और जब उनको भोजन करने का मूड आता है तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ की लीला कैसी है उनकी, वहाँ पर रहते हैं वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं लेकिन रहते जगन्नाथपुरी में हैं, लेकिन ब्रिज की याद में रहते हैं, वृंदावन की याद करते रहते हैं, मेरे वृंदावन के दोस्त लोग, मेरी गाय, मेरी मैया, मेरे पिताजी, मेरी गोपियाँ, मेरे ग्वाल बाल, वो सबकी याद आती है उनको द्वारका में रहते हुए भी। कभी उनको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ द्वारका में, जो प्रेम और आनंद उनको वृंदावन में प्राप्त हुआ वो उनको किधर भी प्राप्त नहीं हुआ। अपने रुक्मिणी जैसे महान पत्नी के हाथ का 56 भोग खाते थे वो, लेकिन फिर भी उनको वृंदावन की याद आती थी, और रुक्मिणी जैसे महान देवी के हाथ का इतना सुंदर भोजन खाते हुए भी रोते थे वो, तो रुक्मिणी कहती थी क्यों रो रहे आप, हमारे खाने में कुछ कमी है क्या, कुछ आइटम आपको अच्छा लगा नहीं कि हमने कुछ गड़बड़ किया, उसमें कुछ आइटम ऊपर नीचे हो गया, क्या ऐसी बातें बताइए, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, हम आपको प्रेम से आपको जो अच्छा लगे वो देना चाहते हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, क्या कमी है हमारे अंदर बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो क्या बात क्या है, बोलते मुझे ब्रज की याद आती है, वहाँ पर सुबह जो मेरी मैया माखन निकाल कर मिश्रे के साथ मुझे खिलाती थी, उसका स्वाद तो कुछ और ही था। ये छप्पन भोग भी बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत रुचकर है, बहुत जायकेदार है, लेकिन मेरी मैया जो सुबह मक्खन गाय का निकाल कर मुझे खिलाती थी, उसका स्वाद इसमें नहीं आ सकता है। और वो कहते थे कि जब मैं छोटा था तब मेरी मैया जो सख्त सख्त खाना होता ना, कभी कभी खाना बहुत लड्डू होता है, बिंदू के लड्डू, वो कड़क होता है ना, कड़क तो बच्चे को टूटता नहीं, वो तो माँ उसको तोड़ के देती है ना, कड़क लड्डू होगा कोई, कड़क वस्तु होगी कोई, चल बहुत सारी वस्तु कड़क होती है, वो बच्चे को तोड़ नहीं सकता है, तो उसको तोड़ के माँ खिलाती है और बताती है बहुत कड़क है, संभाल के खाना, दांत को लगेगा। तो यशोदा माई ऐसे सख्त वस्तु जो है खाने की, वो खुद मुँह पे डाल के चबाकर उसको नरम करके मुँह से निकाल के अपने बेटे के मुँह में डालती थी, बोलते वो जो स्वाद था वो तुम्हारे छप्पन भोग को नहीं आ सकता है। तो मेरी माँ प्रेम से मुझे कष्ट ना हो इसलिए खुद चबाकर फिर निकाल कर, अपने पंछियों को देखा ना, पंछियों को तो कैसे डालते ना मुँह के अंदर अपने बच्चों के, वैसे मेरी मैया जो है मुझे कष्ट ना हो इसलिए मेरे अपने मुँह से चबा कर उसको नरम करके निकाल कर मुझे खिलाती थी, आधा उसको पीस कर हम लोग खिलाते ना बच्चों को पीस कर मिक्सर में, वैसे खिलाते थे, लेकिन वो जो स्वाद था वो इतने सुंदर भोजन में भी नहीं है। तो ऐसे वो हमेशा वृंदावन की याद में रहते हैं, इसका मतलब जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं लेकिन उनको याद वृंदावन की आ रही है, उनका मन जो है वो वृंदावन में है। और जब आदमी कोई दुखी होता है ना, आपने शायद अनुभव किया कि मालूम नहीं, समझो अभी किसी का पति परदेश गया हुआ है और पत्नी बहुत अकेली है घर में, उसको याद आती है पति हमारा कभी लौट के आएगा, अभी तो दिवाली में आएगा, अभी तो बहुत जुलाई महीने में अभी गया हुआ है, तो जुलाई में बाद में दिवाली में आएगा, तो चार महीने के बाद में आएगा, तो उसको बहुत दुख होता है और वो डिप्रेशन में जाती है, बहुत क्या कहते हैं उदास रहती है। तो उदास आपके का एक लक्षण है, अपने उदासी को मारने के लिए क्या करता है मालूम है आपको, बहुत ज़्यादा खाते रहता है, जब देखो तब कोई लड्डू, कोई चिकट चूड़ा, कोई चकली, कोई शंकरपाड़ी ऐसे खाते रहते हो, क्योंकि उसको मन जो है उसका उदास रहता है ना, तो उसको उदासी को मारने के लिए वो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए उसको। इसलिए डॉक्टर सावे है ना हमारे, उसके पास जितने पेशेंट आते हैं उदासी वाले वो सब ज़्यादा वजन के रहते हैं, क्योंकि वो बहुत खाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कितना खा रहे हो, क्योंकि मन को बहलाने के लिए, मन को बिजी रखने के लिए वो हमेशा खाते रहते हैं। ये उदासी के आदमी का लक्षण है। तो हमारे जगन्नाथ भी बहुत उदास रहते हैं वृंदावन की याद में, तो दिन भर खाते रहते, इसलिए बहुत मोटा शरीर है उनका, गोल गोल। तो ये भाव है उनका, हाँ, ये जो जगन्नाथपुरी का भाव है ना, ये बड़ा अनोखा भाव है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लोग पूछते हैं, मुझे अभी किसी ने पूछना इंडक्शन प्रोग्राम में पूछा कि आपके मंदिर में कौन भगवान है, मैंने मंदिर का फोटो दिखाया उसके अंदर ना इंडक्शन में, तो मुझे कौन भगवान है मंदिर में, मैंने कहा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, तो बोले वो ऐसे कैसे हैं, मतलब हाथ नहीं कुछ, पैर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैंने कहा आपको जागृति प्रोग्राम में आना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको समझेगा, लेकिन आपका इंडक्शन चल रहा है तो कैसे आ सकते हैं। तो आज उनका 5 बजे तक इंडक्शन प्रोग्राम है, तो कल भी इंडक्शन प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कल इंडक्शन प्रोग्राम हो जाएगा ना तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको कहानी बता दूंगा। तो ये जगन्नाथ भगवान ऐसे क्यों हैं, तो कारण ये है कि वो जगन्नाथपुरी में आने के पहले द्वारका में जब रहते थे, तभी एक बार ये सभी रानियां बैठकर उनके वृंदावन की कहानी सुन रहे थे। रोहिणी माता जो है ना, बलराम जी की माता है, वो अकेली ऐसी औरत है जो वृंदावन में भी थी, बाद में मथुरा में भी आई और वहाँ से द्वारका भी आई, बाकी सब पीछे रह गए, एक ही माता जी जो है वहाँ पर चली गई। तो सब लोग उनको पूछा करते थे कि आपने तो सब देखा है अपने आँखों से, हमारे महाराज जो थे भगवान हमारे बालक रूप में तो आपने देखा है, हमने तो बड़े हुए थे देखा है, आपने तो बचपन से देखा है उनको, तो हमारे को बताइए ना आपने, तुमने कितना सुना है कि उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, उन्होंने गाय चराई थी और नाच किया था और मोर बने थे और ये हुआ था, मक्खन चोरी करते थे, कितनी अद्भुत कहानियाँ हमने सुनी थी, हमको देखने को थोड़ी मिला है, हमको तो पत्नी बने हम उनकी, तो हमको सुनाओ आप। तो वो नहीं नहीं बोलते थे कि नहीं बोलेंगे तो फिर वो याद करेंगे वृंदावन को तो चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे लौट के, एक बार गए लौट के वापस नहीं आएंगे, तो आपको क्या चाहिए, पति यहाँ पर चाहिए कि वृंदावन में चाहिए? पर नहीं 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 कोई बात नहीं, हम नहीं चाहिए, हमको पति यहाँ पर चाहिए। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया उनको कि हमको सुनना ही है, हम लोग सब बंद करेंगे दरवाज़ा और एकदम एकांत में सुनेंगे और सुभद्रा को बाहर खड़ा कर देंगे और सुभद्रा जी बताएंगी, जैसे ही दूर से आएंगे तो हम लोग को नॉक करेगी, अरे उठो उठो आ गए वो, आगे कथा बंद करो आपकी, कथा सुनेंगे तो चले जाएंगे वृंदावन को। तो सुभद्रा को बाहर खड़ा किया, अंदर बंद करके सुनने लगे, लेकिन सुभद्रा जी जो है वो स्वयं भगवान की बाहर खड़े होकर जब कथा सुन रही थी तो वो भी प्रेम से विभल हो गई, बेहोश हो गई और गिर गई, बड़ी बड़ी आंखें हंसते हुए एकदम खुशी से, क्या बोलते हैं उसको, आनंद विभोर हो गई वो गिर गई। और जिसको खटखटाने के लिए खड़ा गया था ना वही सो गया। तो इतने में जब जैसे भगवान की कथा होती है, कहीं भी होती है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान आते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन जहाँ भगवान की स्मृति होती है, उनकी कथा का गुणगान होता है, उनके बारे में वर्णन करते हैं, वहाँ पर वो उपस्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, अपनी कथा सुनने में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे ही कथा शुरू हुई और वो बेहोश हो गई तो कृष्ण बलराम पहुँच गए वहाँ पर, देखा अरे दरवाज़ा बंद है, हमारी बहन ऐसे विचित्र अवस्था में गिर गई है, क्या बात है, दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है? तो कान लगाते हैं, तो कान लगाते हैं तो उनकी भी अवस्था वैसे ही हो जाती है। कैसी? उनके दोनों हाथ शरीर में घुस जाते हैं, अभी बाहर निकलते हैं, लंबे लंबे 6-6 मीटर के हो जाते हैं, दो दो जॉइंट के अंदर 6-6 इंच का अंतर हो जाता है, हाँ, यहाँ से वहाँ तक हाथ, यहाँ से वहाँ तक पैर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हंस रहे हैं, कभी अश्रु आ रहे हैं, कभी कंपन हो रहा है, कभी रोमांच खड़े हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उनके शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं। और आखिर में जब ब्रज के अंतरंग लीला की बात शुरू होती है ना, एकदम गोपियों के साथ की लीला की, तो कृष्ण बलराम दोनों ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी प्रेम से भरी हुई और बड़ी बड़ी मुस्कान कान तक पहुंची हुई, हंस रहे हैं ब्रज की याद में, और दो हाथ जो ऐसे अंदर बाहर है, पूरे पैर अंदर घुस गए हैं, और शरीर जैसे होता है ना गोणी थैला होता है ना बड़ा, ऐसे थैले जैसा बन जाता है, और उस अवस्था में वो गिर जाते हैं। एक साइड में सुभद्रा के कृष्ण भगवान, एक साइड में बलराम जी भगवान, और साथ में जो है ना चक्र गार्ड, उनका बॉडी गार्ड, उसकी भी यही अवस्था हो जाती है, बर्फ जैसा बन जाता है, बर्फ जैसा, मराठी में कहते हैं थिजड़े, थिजड़े मंजे गाय, एकदम ऐसे कड़क बन जाते, हाथ भी नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, भाव में इतना आनंद में, इतना आनंद हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उतने में नारद मुनि आकाश से जाते रहते हैं, नारायण नारायण बोलते हुए, देखते अरे कितना अद्भुत स्वरूप भगवान का है, तो नीचे उतर जाते हैं और देखते रह जाते हैं। उनको मन में इतने सुंदर भगवान को देखकर इतना प्रेम का अनुभव करते हैं वो, इतना प्रेम का अनुभव कि पहले कभी अनुभव किया ही नहीं था ऐसे प्रेम का। नारद मुनि भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनके अंदर बहुत प्रेम है भगवान के लिए, लेकिन वो नारद मुनि भी खुद भी महसूस करते हैं कि मेरे मन में इनके प्रति जितना प्रेम है उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम का अनुभव मैं आज कर रहा हूँ केवल इनको देखकर। इस अवस्था में बहुत देर देखते हैं और बड़े प्रेम का अनुभव करते हैं, आंखों से अश्रु आते हैं उनके, और फिर जाकर वो सबको छूते हैं, जैसे छूते हैं तो वो होश में आ जाते, सब लोग उनके हाथ पैर बाहर निकल जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान ये कैसा रूप था आपका आज का, बड़ी बड़ी आंखें, उसके अंदर लाली माँ, हाँ ऐसे कहते हैं कि जब माँ अपने बालक को देखती है ना तो उसके आँख के अंदर लाली आ जाती है पूरी, वो कोई देखता नहीं, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब माँ बड़े ही प्रेम से अपने बालक को देखती है दूध पीने के बाद में, ऐसा देखती है उसका मुँह देखती है तो उसके आँखों में लाल रंग हो जाता है, वो प्रेम का लक्षण होता है। जगन्नाथ जी का है ना लाल, अंदर एक लाइन लाल है ना अंदर उसकी, बड़े प्रेम से देख रहे हैं। तो कैसे हो गया आपका ये स्वरूप? तो उन्होंने कहा कि जब हमने ब्रज की याद किया, आपको ब्रज के बारे में सुना, तो प्रेम से हृदय उमड़ आया हमारा, और हमारी ऐसी अवस्था हो गई। तो नारद मुनि ने कहा, अरे आपकी तो ऐसी अवस्था हो गई, लेकिन उसको देखकर मेरी क्या अवस्था हो गई? मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि मेरे मन में इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया जो मैंने पहले कभी भी उसका अनुभव नहीं किया था। संत लोग बड़े दयालु होते हैं, वो केवल खुद का आनंद देखते नहीं, अरे मुझे मिल गया बस हो गया, अभी मैंने देखा सबको जाके बताएंगे, नहीं, वो कहते जो मैंने देखा वो मेरी इच्छा है कि सबको देखने को मिलना चाहिए। इसलिए भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, संत लोग ऐसे करुणामयी होते हैं, दयामयी होते हैं। हम लोग जब कुछ वस्तु को प्राप्त करते हैं ना, तो अपने पास रखते हैं उसको छुपा कर, किसी को देते नहीं। लेकिन संत लोग जब उसको कुछ मिल जाता है तो सब दुनिया को बांट देते हैं, जो भी खुशी उनको मिलती है वो दुनिया को बांटना चाहते हैं हमेशा, और भगवान के विषय में कुछ होगा तो वो तुरंत लोगों को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ने देखा और उसका इतना आनंद लिया और मस्त रह गए, अपने आप ही भूल गए सबको, ऐसा नहीं। उनको मन में याद था कि भौतिक दुनिया में, अपने भारतवर्ष में, पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में और नारक लोक में इतने सारे लोग कष्ट भोग रहे हैं, भगवान को भूलकर, भगवान को छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए वो कष्ट भोग रहे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? वही कल्याण होना चाहिए। और ये तुमने जो रूप दिखाया भगवान, वो इतना अद्भुत था कि उनको देखने मात्र से ही मेरे मन में इतना प्रेम आया जो मैंने भी कभी अनुभव नहीं किया। तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप इसी रूप में हमारी दुनिया में आकर जन्म लो, अवतार लो, प्रकट हो जाओ, ताकि जो लोग पापी है, जिन लोगों को आपके लिए प्रेम नहीं है, जो लोगों को संसार में ज़्यादा प्रेम है, माया में अधिक प्रेम करते रहते हैं, आपके प्रति उनको आकर्षण नहीं है, वो लोग भी वहाँ पर आएंगे और आपको देखेंगे तो प्रेम से पागल हो जाएंगे, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा, पापों की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा, पाप करने की इच्छा से मुक्त हो जाएंगी, वो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसमें भगवान का आपका प्रेम जो है वो उमड़ आएगा अपने आप ही स्वतः, जैसे मेरे हृदय से आया था। तो भगवान ने कहा तथास्तु, हम आएंगे। तो ये रूप में वो प्रकट हो गए। और इस रूप की क्या महिमा है कि इस रूप में जो भी लोगों को देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अभी आप लोग बोलते हैं हम तो देख रहे हैं हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम तो वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे ही, जैसे आए तसी हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको इनकी महिमा मालूम नहीं है, हमारा हृदय अभी तक पवित्र नहीं हुआ है, हमारे हृदय में अभी तक इच्छा नहीं प्रकट हुआ। बोला क्या लकड़ी की मूर्ति, ठीक है होगा शायद, क्या है किसने बनाया होगा टाइम पास में, खेल खिलौने के लिए, बच्चों के लिए बनाया होगा, ऐसा ऐसा विचित्र मूर्ति कौन बनाएगा, ऐसे खिलौने बनाया होगा, बच्चे लोग खेलते होंगे, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जो भाव से इनको देखेगा उसको कृपा की प्राप्ति होगी। और आपके देखने से भी बड़ी एक बात है, वो ये है कि आपको वो देख रहे हैं, वो आपके देखने से भी अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझो कोई अंधा व्यक्ति आया, समझो मंदिर में आया, एक अंधा व्यक्ति ऐसा ही था, वो बोला मुझे मंदिर ले चलो, तो मंदिर ले गए उसको, तो मुझे आपको क्या दिखता है मंदिर में, आप क्यों मंदिर जा रहे हैं? तो बोले मंदिर में जाना मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ देखना है, वो तो मुझे देख रहे हैं ना, मैं अपने आप को उनको दिखाने को जा रहा हूँ, जब मैं जाऊँगा खड़ा रहूँगा तो मुझे देखेंगे, उनकी जो कृपा दृष्टि है वो मुझ पर पड़ेगी। तो एक बात मंदिर में होती है हमारा उनको देखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको हमको उनका हमारा हमको देखना। ये बात ध्यान रखना हमेशा, हम मंदिर जाएंगे तो भगवान भी आपको देख रहे हैं, जब इनकी कृपा दृष्टि बड़ी बड़ी आँखों से आपको देखेंगे ना, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और वो केवल देखने के लिए ही आए हैं, अपने आप को दिखाने के लिए और तुमको देखने के लिए आए हो। ऐसे कहा गया है जगन्नाथपुरी के अंदर जीवन में एक बार आप जाना है कबूल, बस एक बार भी आप जाएंगे ना तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा यहाँ पर, एक बार केवल जीवन में एक बार कर्जा लेके इकट्ठा करके सेविंग करके आधी रोटी खा के जो भी बचाएंगे, एक बार आपको जगन्नाथपुरी जाना है उनका दर्शन करने के लिए, बस ताकि वो भी आपको देखें, आप भी उनको देखें। यही इनका महत्व है, नेत्र उत्सव। बस आंखों का मिलन है, आपका उनकी आंखों का मिलन होगा, बस हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। इतनी महिमा है इनकी, इसलिए हम उनको रोज रथ में बिठाकर हर एक मरीज के पास लेके जाते हैं। अभी आप लोग उनको लेके जाते हैं, कुछ सोचते होंगे क्या, अरे 5 बज गए, अभी घर जाना है, अभी 2 घंटा इनको घुमाना है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी 3rd फ्लोर बाकी है, अभी 4th फ्लोर बाकी है। हाँ, घर में मेरे बेटे अभी स्कूल से आके बैठे होंगे, ट्यूशन चालू होने वाला होगा उनका, ये भाव से जाएंगे तो मरीज को क्या लाभ होगा। हमको लगना चाहिए कि जगन्नाथ भगवान को तुम्हारे दरवाजे पे आंखों के सामने लेके आ रहे हैं। आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, तड़प रहे हो वेदना से, बुखार से, दर्द से, वो आपको मिलने आपके बिस्तर के पास में आ रहे हैं कृपा देने के लिए, उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखने आ रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा आप पहुंचा रहे हैं मरीज की तरफ, ये भाव होना चाहिए उसका। और रथ यात्रा करने वाला भक्त जो है बड़ा, उसको उत्साही होना चाहिए कि आज मेरी रथ सेवा है, आज मुझे रथ को लेकर जाना है, भगवान की कृपा, भगवान को लेकर देके जाना है, मरीजों को दर्शन कराना है। ये बड़े उत्साह से, ऐसा नहीं कि लटके हुए चेहरे, तेल से भरे हुए, लग रहा है कि ये अभी गिरने वाला है, हाँ इसका अभी बैटरी डाउन हो गया है, चार्ज खत्म हो गया है इसका, ऐसा नहीं। एकदम प्रफुल्लित चेहरा, आप मेकअप भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए, बहुत फ्रेश, एकदम खुशी से। हाँ, अगर आप किसी के पास 1 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो तो कैसे जाओगे, अरे यार 1 करोड़ रुपये आप, अरे मैं आपके लिए 1 करोड़ रुपए लाया हूँ, जानते हो आप, आपको भी कितना खुशी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, दे रहा हूँ इसलिए। ये तो 1 करोड़ रुपए तो दुनिया का 1 करोड़ रुपए है, मैं तो जगन्नाथ जी की कृपा की बात कर रहा हूँ, तो किसी करोड़ से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ऐसी कृपा आप लेकर जा रहे हैं मरीज के पास, इतना आपको आनंद होना चाहिए। अगर दुखी भी होगा तो भी दुख खत्म होकर आनंद का प्रकाश होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, लटके हुए चेहरे से भी उल्लास निकलना चाहिए, ऐसा काम है ये ऐसे अनोखे भगवान है, इसलिए उनका ऐसा अद्भुत रूप जो है वो मेरा रोड में सब जगह छा गया है। अरे किसी भी घर में जाओ, झोपड़ी में जाओ, 1 रूम किचन में जाओ, 2 रूम में जाओ, 3 रूम में जाओ, 2.5 में जाओ, पेंटर पाड़ा में जाओ, सब जगह जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। हमारे यहाँ पास 2 है, एक घूमने वाले और एक बैठने वाले, एक साल में 1 बार घूमते, एक रोज घूमते, हाँ पता नहीं तीसरे भी आ सकते हैं, आई डोंट नो, नई बिल्डिंग आएगी तो अभी और एक आएंगे पीवी दोषी में, उधर भी घूमेंगे। हाँ, सब जगह घूमना इनका काम है, जहाँ जहाँ लोग नहीं आ सकते हैं वहाँ वहाँ ये पहुँच जाते हैं। ऐसे कोई भगवान हो सकते हैं क्या? देखो आप सब जगह क्या बोलते हैं, चर्च में जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। हाँ, मस्जिद तुम्हारे घर पे नहीं आती है, ये अपना मंदिर छोड़ के सब जगह पहुँचते हैं। अरे यहाँ तक नहीं, वो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ब्रिटेन और इटली और जर्मनी और फ्रांस और रशिया और कितने देशों, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, सब देश में रथ यात्रा होती है। ये प्रभुपाद जी जो है उन्होंने जगन्नाथ जी को सब जगह पे लेके गए हो दुनिया भर में, और आज भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ रथ यात्रा होती है ना, वहाँ पर उसका मेन रोड जो है ना बंद हो जाता है, ऑफिशियल परमिशन लेकर रथ बंद, रोड बंद हो जाता है, और सब लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, मेयर, महापौर, सब लोग आते हैं और रथ यात्रा करते हैं आनंद से एकदम। न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में, सब जगह रथ यात्रा होती है। हमारे जगन्नाथ भगवान जो है, अरे अपना मंदिर नहीं, अपना देश छोड़कर गए हैं और कहाँ कहाँ जा जाकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कोई अमेरिकन को पता भी नहीं क्या है, वो भी देख रहे हैं उनको, कितनी कृपा बरसा रहे हैं। देखो आप, प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा काम किया है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में, अभी मैं आपको कारण बताता हूँ कि वो उनको प्रवेश क्यों नहीं देते, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर उनका एक स्क्रिप्चर है, शास्त्र है उनका, अपना ग्रंथ है उनका, वो बाहर किसी को मिलता नहीं, खाली वो उनके पुजारी लोग ही पढ़ सकते हैं उसको, वो भी सब पुजारी नहीं, जो मेन पुजारी है वही पढ़ सकता है। तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक दिन ये हमारे जगन्नाथ जो है वो विदेशी भक्तों के प्रेम से पागल होकर जगन्नाथपुरी छोड़कर विदेश जाएंगे, ऐसा लिखा है उसके अंदर। तो उनको डर क्या लगता है, ये विदेशी लोग अभी प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बने हुए हैं, उनको पता चल गया है जगन्नाथ जी क्या वस्तु है, उस पर उनको अट्रैक्शन हो गया है, प्रेम हो गया है, साल में बहुत बार आते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उस टाइम जरूर आते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, वेट करते हैं एक साल में एक दिन आने वाले बाहर, क्योंकि वापस गुंडीचा मंदिर में गए ना, वहाँ पर फिर उनको प्रवेश नहीं है। दो दिन, एक दिन वहाँ जाने के टाइम पे रथ पे, एक दिन वहाँ से आने के टाइम पे, जब रास्ते पे रहते हैं तो सब फॉरेनर लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो बोलते हैं इनकी नज़र मिल गई उनके साथ में एक बार प्रेम की ना, तो इनके पीछे पागल हो जाएंगे, इसलिए उनको अंदर नहीं भेजते लोग, उनमें शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत विरोध किया कि आप कैसे रथ यात्रा कर सकते हैं, जब रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी में होती है और वहीं पर होनी चाहिए और कहीं नहीं हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने उनको खंडन किया था उनका, कि जगन्नाथ जी केवल ऐसा लिमिटेड नहीं है, जगन्नाथ भगवान प्राइवेट लिमिटेड है, जगन्नाथपुरी ऐसा नहीं है, वो तो पब्लिक फिगर है, वो सब दुनिया के जितने जीव हैं, मनुष्य के लिए भी नहीं, कुत्ता बिल्ली पंछी के लिए भी है, वो सब जीव के पिताजी है वो, अहम सर्वस्य प्रभु अहम बीज प्रद पिता। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ही है वो, भगवान खुद बोल रहे हैं मैं सब जीव का पिताजी हूँ, केवल तुम्हारे पिताजी कैसे हो सकते हो, सबके पिताजी है वो, सबको मिलना चाहते हैं, जितने जहाँ जहाँ उनके बालक बैठे हुए हैं, जब वो भूल चुके हैं कुछ याद कर रहे हैं कुछ द्वेष करते हैं, सबको मिलते हैं वो जाके, है ना। किसी पिताजी का 5 बच्चे होंगे, एक बच्चा द्वेष करता होगा, झगड़ा करता होगा, एक बच्चा नहीं मिलना चाहता होगा, एक बच्चा छोड़ के गया होगा, 2 बच्चे बहुत प्रेम करते होंगे, लेकिन पप्पा सबको जाके मिलते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, बोले बेटा तो पागल है वो, तो पता नहीं उसको, जानता नहीं है। तो वैसे आप कैसे बोल सकते हो कि हमारे भगवान है, तो सबके भगवान है, क्रिश्चियन लोगों के भी वही भगवान है और मुसलमानों के भी है और पंछियों के भी है और पेड़ों के भी वही भगवान है, एक भगवान है वो। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको सब दुनिया के लिए प्रस्तुत किया, सब जगह पे। अरे मुंबई में कितनी रथ यात्रा होती है ना, आपको एक घाटकोपर में होती है, एक भटूंगा में होती है, एक खार में होती है, एक कुलाबा में होती है, एक नागपाड़ा में होती है, एक महालक्ष्मी में होती है, एक शिवाजी पार्क में होती है, एक जुहू में होती है, एक मीरा रोड में होती है, एक भाईंदर में होती है, एक वसई में होती है, एक विरार में होती है, एक नालासोपारा में होती है, गिनते जाओ पता नहीं और कितनी होती है, हाँ पालघर में होती है, रथ यात्रा होती है सब जगह पर। कारण क्या उसका, कि वो सब जगह जाकर गली गली में जहाँ पर लोग उनको जानते भी नहीं वहाँ पर जाकर कृपा देना चाहते अपनी, इतना बड़ा उत्सव है जगन्नाथपुरी का, और ये उत्सव हम भक्तिविधान में भी मनाते हैं। पता नहीं हमारे मरीज मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इनको पता है कि नहीं है, उनके पास पहुँचते हैं, खास करके जब विजिटिंग होता है ना आवर शाम का, जब रिलेटिव लोग मिलने को आते हैं तभी इनको लेके जाते हैं, तो मरीज को भी और रिलेटिव को भी सब देख लो, आराम से फूल चढ़ाओ, दंडवत करो, और बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से उनको दंडवत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कार्तिक महीने में दीपक चलाते हैं, इतनी कृपा है, आपको न चाहते हुए भी कृपा मिल रही है, कोई योग्यता न होते हुए भी, योग्यता का विचार न करते हुए भगवान अपनी कृपा दे देते। तो ये जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा है अगले रविवार को, इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई आज, क्योंकि अगला मंगलवार तो उसके बाद में आएगा ना, 25 तारीख को, उसके पहले अभी आज का ही मंगलवार है। इस रविवार को जगन्नाथ की स्नान यात्रा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन जगन्नाथ जी जो वरदान दिया था नारद मुनि को वो पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, वहाँ पर वादा किया द्वारका में, फिर यहाँ प्रकट हो गए, ज्येष्ठ पूर्णिमा वो दिन रविवार को आता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ ने ही राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि मेरा पब्लिक स्नान होना चाहिए, इस दिन सबके सामने मेरा अभिषेक होना चाहिए, तो वो अभिषेक 11 बजे इतवार के दिन राधा गिरधारी इस्कॉन के मंदिर में होने वाला है। ऐसे कहा गया है कि जो राधा, जो जगन्नाथ जी भगवान का पब्लिक अभिषेक का दर्शन करता है उसे इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो उत्सव रविवार को है। और इस उत्सव को जब बहुत पहले, बहुत सैकड़ों साल पहले, एक गणेश गणपति का भक्त था, बहुत स्टॉन्च था एकदम, बहुत कड़वा भक्त था गणपति का, वो गणपति को भगवान मानता था, सबका नियंता, तो किसी ने उसको बताया अरे जगन्नाथपुरी में ऐसे भगवान है ना, वो परम भगवान है, उसका दर्शन जरूर करना चाहिए, तो वो जगन्नाथपुरी में आया, ये सोचकर आया कि मेरे ही भगवान होंगे यहाँ पर, तो देखा तो अलग ही कुछ, ना सुंड है ना कुछ है, तो निराश हो गया वो, उसी दिन आया था वो, उन्होंने उनको बताया गया कि आज अभिषेक है उनका, पब्लिक में स्नान करेंगे, आपको जाना चाहिए, आपके भगवान का अभिषेक होगा, तो पहुंच गया सुबह अभिषेक देखा, सब कुछ देखा, लेकिन वो सुंड नजर नहीं आई उसको, तो उसको लगा कि ये तो भगवान नहीं है, जाने लगा वो। लेकिन वो सच्चा भक्त था गणेश जी का। तो जगन्नाथ ने एक बालक का रूप धारण किया और पीछे पीछे भाग के गया उसके, और ये वो महाराज जी, अरे महाराज जी क्यों जा रहे हो आप, बोले क्यों रहना है इधर, मेरे भगवान तो नहीं है ये, अलग भगवान है। बोला नहीं, वही भगवान है, वो सब एक है उनके अंदर, सब उनके अंदर समाये हुए हैं। आपको देखना है तो आप जरा देखो, रुको जरा, जाओ मत, जल्दी मत करो, शाम तक तो रुको आप। तो वो मान गया और रुक गया, और जब वापस लौट के गया तो शाम हो गई थी। शाम हो गई तो क्या देखा, एक हाथी जगन्नाथ के जगह पर, एक हाथी बलदेव के जगह पर बैठा हुआ है, अच्छी सूंड निकल के आई है। तब वो समझ में आएगा, अरे यही है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जगन्नाथ जी ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए गणपति का रूप दिखाया उस भक्त को। उस कहानी की याद में हर स्नान यात्रा की शाम को हाथी वेश का दर्शन होता है हर मंदिर में जहाँ जगन्नाथ जी हैं। तो रविवार को सुबह 11 बजे अभिषेक और शाम को 4:30 से रात को 9 बजे तक इस मंदिर में एक काला हाथी और एक गोरा हाथी, एक काला हाथी इधर, एक गोरा हाथी उधर, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका कि आपको दो हाथी नजर आएंगे। उस कहानी की याद में कि भगवान जो है वो भावग्राही हैं, जिसके हृदय में भाव होता है उनके प्रति उसका प्रतिसाद देते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की, और जगन्नाथ जी स्वयं जागृत भगवान हैं। जो भक्त लोग वहाँ पहुँचते हैं, जिनकी श्रद्धा है, प्रेम है, उनको वो चमत्कारिक दर्शन देते हैं, अनुभव भी देते हैं। ऐसे अनेक कहानी आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी ये बात समझना कि लकड़ी के भगवान है, खड़े में क्या है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। श्रद्धा से देखो उनको, आप प्रेम से देखो, तो आपको ऐसा अजीब अनुभव आएगा। हमारे मंदिर में भी बहुत लोग, आप लोगों को विनती है, आप लोगों के आनंद के लिए हमने वो मंदिर को बड़ा किया है, अच्छा टाइल लगा कर बहुत सुंदर किया है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे नीचे मंदिर में अब तक गए नहीं, नए मंदिर में? आप लोगों को विनती है कि आप चाहे मरीज हो या चाहे कर्मचारी हो, रोज सवेरे काम पे आने के पहले मंदिर जाकर दर्शन कीजिए, और काम हो गया तो उसके बाद दर्शन कीजिए, फिर काम घर पे चले जाएंगे। उनको देखना ही तो बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव। तो इतना सुंदर मंदिर बनाया है, तो आपके लिए बनाया है। उधर भी हर दिन, हर हफ्ते को एक बार भगवान का ड्रेस बदली करते हैं, और आप उनको जाकर देखेंगे तो आपको वो अलग नज़र आएंगे। जैसे हम लोग वही शर्ट पैंट कभी कभी रिपीट करते हैं 8 दिन के बाद, लेकिन फिर भी अलग दिखते हैं, कभी मूड अलग रहता है, कभी गुस्से में है, कभी शांति में है, कभी आनंद में है। वैसे जगन्नाथ जी भी व्यक्ति हैं, हाँ हमारे जैसे हैं, जब श्रृंगार करते हैं तो अलग अलग दर्शन देते हैं। आपको लोग क्या वही वही देखना है, नहीं, हर रोज अलग है वो। जिस रूप में दर्शन करेंगे वैसा ही दर्शन पाएंगे, जिस भाव से देखेंगे वैसा दर्शन देंगे आपको। आपका भाव अच्छा रहेगा तो और अच्छा दर्शन होगा आपका। कभी कभी लगेगा कि वहाँ से हिले ही नहीं, वहीं बैठे रहे। तो बैठो, आपके लिए बनाया मंदिर, इतना लाख रुपया खर्च करके बनाया, वो क्यों बनाया है कि आप लोग जाएं। अगर आपको टाइम नहीं है तो कम से कम जहाँ काम पे जाना ही पड़ता है वहाँ पर जाके दर्शन तो करो भगवान का। कोई लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कोई माला बना रहे हैं, कोई उनको भोजन करा रहे हैं, इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। उनका प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करते हैं, उनका प्रसाद प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, फिर मरीजों को बांटते हैं। कोई ICU का पेशेंट है, कोई सीरियस है, उनका प्रसाद खाता है और शक्ति प्राप्त करता है, हिम्मत प्राप्त करता है, हौसला प्राप्त करता है, इतनी कृपा है। हाँ, और हम लोग फिर भी आलस कर रहे हैं वहीं पर वहीं जाने के लिए, लेकिन जाना चाहिए आप लोगों को। मैं शाम को रोज़ बैठता हूँ वहाँ पर, मुझे घर पर जाने का दिल नहीं करता, इतना अच्छा लगता है। इतनी प्रकार की लाइट लगा के रखे, कभी डिम लाइट, कभी पावरफुल लाइट, ऐसा अच्छा लगे वैसा लगाओ और बैठ जाओ और उनसे बात करो, उनसे संवाद करो, दिल की बात करो उनसे। कई लोग आके वहाँ पर रोते हैं क्योंकि मरीज कोई बीमार होगा, सीरियस होगा, तो उसकी चिंता में आके वहाँ पर रोते हैं, अपने दिल के भाव को भगवान के सामने प्रकट करते हैं। आपको भी कोई समस्या होगी, कोई घर में परेशानी होगी, कुछ होगा, आप करके तो देखिए, उनके सामने जाके बोल दीजिए, भगवान ऐसा ऐसा है, देख लो आपको क्या करना है। आपको ऐसे अनुभव आएंगे, आप लोग भी दंग रह जाएंगे। लेकिन श्रद्धा की जरूरत है। आप बोलेंगे ऐसे प्रवचन में सुना था वो, तो लकड़ी की मूर्ति क्या करने वाले, फिर भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। श्रद्धा से बोलना है आपको, जो आपके मन में है भावना, वो उनके सामने प्रकट करना है, फिर देखो आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा उनका। तो ये जागृत भगवान है, और जो लोग उनकी सेवा करते हैं वो उनका लाभ प्राप्त करते हैं भगवान के प्रेम से। अभी आप बोलेंगे अरे क्या फ़ायदा है उनके सामने रखे हो, तो खाते तो नहीं है वो, तो इतना साथ साथ आइटम बना रहे हैं आप लोग, इतना महंगा महंगा घी का आइटम बनाते हैं, क्या क्यों बनाते हैं? तो श्रद्धा की बात है, हम जानते हैं कि वो खाते हैं उसको, इसलिए हम अर्पण करते हैं, उसका स्वाद बदली हो जाता है जब वो प्राप्त करते हैं, उसको भोजन करते हैं तो उसके बाद में उसका स्वाद जो है वो बहुत दिव्य होता है। हाँ, तो ये सब प्रेम और श्रद्धा की बातें हैं, ये हमको सीखना है भक्ति वेदांत में रह के, हमको ये सीखना है ये प्रेम और श्रद्धा क्या होती है। हाँ, बाकी केवल नर्सिंग करना है, कोई क्लर्क बना हुआ है, कोई वार्ड बॉय बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक रह आपको सीमित रहना नहीं है, उसके आगे जाकर भक्ति वेदांत में आपको एक भेंट मिल रही है प्रेम और श्रद्धा की भगवान के प्रति, उसको स्वीकार करना है और जीवन को, हृदय को परिवर्तन करना है और जीवन को समृद्ध बनाना है। मेक योर लाइफ वेरी रिच एंड ऑपुलेंट बाय डिवोशन टू गॉड, भगवान की भक्ति और प्रेम से अपने जीवन को बहुत समृद्ध बनाइए। आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।